एकोधिष्ट आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन। पुलत से जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोधिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा। जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, साथ ही यह सभी आपको बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को कैसे असोच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरण सोच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह असोच सपिंड 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू रहता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका असोच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात का असोच रहता है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौच ग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए पाथे है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशा के बाद ही प्रेत को यमपुरी ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इसमें सब प्रकार की दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। 10वें और 11वें दिन जब सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। असौच की समाप्ति के 2रे दिन एकोधिष्ट श्राद्ध करें। इसमें न तो आवाहन होता है न अग्रोकरण अग्नि में हवन, विश्वदेवों का पूजन आदि भी नहीं होता है। एक ही पवित्री, एक ही अर्ध और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्ध और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तौपतिष्ठाताम तुम्हें प्राप्त हो ऐसा करना है। तत्पश्चात तल तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभिरम्यापाताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति ही होना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक सैयादान फल वस्त्र समन्वित कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादशा श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चंद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोधिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशा के दिन वृषोत्सर्ग करें, उत्तम कपिला गोदान दें और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसको कुंभदान कहते हैं। तदंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंड पिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर पार्वण श्राद्ध का अधिकारी रहता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में अभ्युदायिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्वदेवों की फिर पुत्रों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आह्वान करें तो प्रेत का आसन उनसे अलग रखें, फिर चंदन जल और तिल से युक्त चार अर्घ्य पात्र बनाएं तथा प्रेत के अर्घ्य पात्र का जल तीन भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्य पात्रों में डालें। इस प्रकार पिंड दान करने वाला पुरुष चार पिंड बनाकर ये समनाह इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंडों को तीन भागों में विभक्त करें और एक एक भाग पितरों के तीन पिंडों में मिला दें। इस विधि से पहले अर्घ्य को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करें। तदंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्रिस्वात आदि पितरों के बीच बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में ही उसका ही भाग देना चाहिए। उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आवे तब तब तीन पिंडों को ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोद्विष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के क्षयाद के दिन जो एकोद्विष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। क्षया तिथि को एकोद्विष्ट न करके पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो इसके लिए विधिपूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नोकरण की प्रक्रिया करें और उसी से पिंड भी दें। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि तीन पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने के कारण उससे लेकर तीन पीड़ित के पितर सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी में से निकलकर लेप भागी होता है। कुश में हाथ पोछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता पितामह और प्रपितामह ये तीन पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर तीन पीढ़ी तक पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। छह तो ये हुए, इनमें से सातवां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। यही सात पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन हव्य और कव्य का दान मनुष्य को किस प्रकार देना चाहिए? पितृलोक में उसे कौन ग्रहण करता है? यदि इस मर्त्यलोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाए अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनि में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं, उन्हें वह किस प्रकार से मिल पाता है। पुलत्स्य जी बोले, हे राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र के प्रपितामह आदित्य के स्वरूप है, ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति के साथ किया गया श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ न कुछ नाम गोत्र और देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया गया सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि सब शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि प्राप्त हुए हो, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त हो रहता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो, तो उन्हें अन्नपान आदि अनेक रूपों में श्रद्धा की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। उसका फल है कि ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे और किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फलदायी होता है। पुलत्स्य जी बोले, हे राजन, पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहां किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। यह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही प्रिय रहता है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ है। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ है। गंगा सागर नामक तीर्थ को भी परम शुभदायक तथा सर्वतीर्थमय बतलाया गया है। ब्रह्मसर तीर्थ और शतद्रु सतलज नदी का जल भी शुभ माना गया है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला होता है। वहां गोमती में गंगा का सनातन स्तोत्र प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ, वाराह और देवादिदेव शूल पाणी विराजते हैं। वहां सोने का दान दिया जाता है। वहां महादेव जी को 18 भुजा वाली वहां पे मूर्ति है। पूर्व काल में जहां धर्म चक्र को की निमी जीर्ण शीर्ण होकर नीचे गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य से प्रसिद्ध हुआ है। वहां सब तीर्थों का निवास है। जो वहां जाकर देवादिदेव वारा का दर्शन करता है, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धाम में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र में भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी ने पितृतीर्थ के दर्शन किए थे। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्करणिया में विराजमान हैं। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पुण्यमय तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इक्षुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय रहता है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। वहाँ का पितृतीर्थ संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला होता है। हे राजन, नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अक्षोदा, विपासा, व्यास नदी, पुण्य सलिला सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफलदायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कलिजर गिरी, तीर्थोपदेद, हरोपदेद, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपाद, नर्मदा द्वार तथा गया तीर्थ, ये सब पितृतीर्थ कहे गए हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने वालों को समान फल की प्राप्ति होती है। स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं उनकी क्या बात है। ओमकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक, ये सब पितृतीर्थ है। अमरकंटक में दिए गए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की उपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले होते हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण वादियों को हराने वाला है। वहाँ श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की उपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नाम का तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था, इसीलिए वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया है। चरमणवती नदी, शूलतापी, पयोष्णी, पयोष्णी संगम, महोषधि, चारणा, नागतीर्थ प्रवृत्तिनी, पुण्यसलिला, महावेणा नदी, महाशाल तीर्थ, गौतमी, गोमती, वरुणा, अग्नितीर्थ, भैरव तीर्थ, भृगु तीर्थ, गौरी तीर्थ, वैनायक तीर्थ, वस्त्रेश्वर तीर्थ, पापहर तीर्थ, पावन सलीला, वेत्रवती, बेतवा नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दर्शना महानदी, शतरुद्र, सतान्ना, पितृपदपुरी, अंगारवाहिका नदी, शोण नदी, घरघर नदी, घाघर नदी, परम पावना कालिका नदी और शुभदायिनी पित्रा नदी, ये समस्त पितृतीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इस तीर्थ में जो भी पिंड आदि दिया जाता है वह अनंत काल तक फल देने वाला होता है। सतवटा नदी, ज्वाला नदी, शरद्वी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारिकापुरी, उदक्षर सरस्वती, मालवती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूतापा तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, साख तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलिला, महानदी, इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पापों का हरण करने वाले हैं। पुण्यमयी तुंगभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावन सलीला, गोदावरी, उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्र्यंबक तीर्थ, जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। इनमें स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भव तीर्थ, सनातन पुण्य तीर्थ, पुण्यमय रामेश्वर तीर्थ, वेणायु, अमलपुर, प्रसिद्ध मंगल तीर्थ, आत्मदर्श तीर्थ, अलंबु तीर्थ, वत्सव्रातेश्वर तीर्थ, गोकामुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरश्रंद, मंगल तीर्थ, अमलपुर, सनातन तीर्थ, उत्तम व्यास तीर्थ, पृथद्रक, सहस्त्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, नामधेय तीर्थ, सौमित्र संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाद तथा प्रियमेलक, ये भी श्राद्ध के लिए उत्तम स्थान बताए गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया गया है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी सिद्धवट, पाशुपत तीर्थ, पर्यटिका तीर्थ, इन सब में किया हुआ श्राद्ध 100 करोड़ों गुना फल देता है। इसी प्रकार पंचतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है, उसमें उसके तट पर हजारों शिवलिंग है। वहीं जामदग्ना तीर्थ और उत्तम मोदायतन तीर्थ है, जहां गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रवाहित होती रहती है। इसके सिवा हव्य कव्य नामक भी एक तीर्थ है। वहां किए गए श्राद्ध होम तथा दान 100 करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्त्रलिंग और राघवेश्वर नामक तीर्थ का महात्म्य भी ऐसा ही है। वहां किया हुआ श्राद्ध अनंतगत गुना फल देता है। शालग्राम तीर्थ, प्रसिद्ध सोनेपत तीर्थ, वैश्वानरा शय तीर्थ, सारस्वती तीर्थ, स्वामिति तीर्थ, मलंदरा नदी, पुण्य सलीला कौशिकी, चंद्रका, विदर्भ, वेगा, पांगमुखा, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया गया श्राद्ध भी अक्षय को प्राप्त होता है। लोहदंड तीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याणमय तीर्थ, कुब्जा मृक, उर्वशी पुलिन, संसार मोचन तथा ऋण मोचन तीर्थ, इनमें किया गया श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टाहास तीर्थ, गोमतेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, हंस तीर्थ, प्रसिद्ध पिंडाकर तीर्थ, शंखोद्वार तीर्थ, भंडेश्वर तीर्थ, बिल्वकर तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजाधिराजा बद्री तीर्थ, वसुधरा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय और शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंड देने वाले पुरुष को परम पद प्राप्त होता है। मातृगृह तीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ अत्यंत पावन है। जिनमें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नामक पुरी तथा राजगुरु नामक वन पावन तीर्थ है। वहीं च्यवन ऋषि का आश्रम पुनः पुनः पुनपुन नदी तथा विषयाराधन तीर्थ भी है। ये सभी पुण्यमय प्रदेश बताए गए हैं। हे राजेंद्र, लोगों में यह कविदंती प्रचलित है कि ये एक समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहां जाएगा वह 7 पीढ़ी तक पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक ही होने वाली संतान को तार देगा। माता मां आदि के संबंध में यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्करारण्य, नैमिषारण्य और धर्मारण्य पहुंचकर भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा एवं पिंडदान करें। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर तथा गया शीर्षवट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है वह मार्ग में पैर रखते हुए नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया के पिंडदान के प्रभाव से प्रेतत्व का छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि हुए थे जो अपने दोनों हाथों के अग्र भाग में भरा हुआ ताम्रपत्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती रहती थी और उनके पितर भी तृप्त रहते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। गया में पिंडदान से बढ़ चढ़ कर कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही तीर्थ में पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कोई कोई मुनीश्वर अन्नदान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्रदान को उत्तम बतलाते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान देते हैं वह धर्म का हेतु श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है। विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो क्या बात है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रह को भी तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त, 6 घड़ी तथा तक प्रातःकाल रहता है। उसके बाद 3 मुहूर्त तक का समय संगव कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त का समय मध्याह्न होता है। उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायन होता है। सायन काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राक्षस की वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं। उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है उसके कुतपक कहते हैं। उसी समय धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना गया है। खड़कपात्र, कुतप, नेपाल देशीय कंबल, सुवर्ण, कुश, तिल तथा 8वां दोहित्र, पुत्री का पुत्र, ये कुत्सित अर्थात पापों को संताप देने वाले हैं। इसलिए इन 8ों को कुतप कहते हैं। कुतप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया गया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। इस एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला और समस्त पापों का निवारण करने वाला होता है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थ निवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह सब पापों को शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है।